This is an ABP Life podcast.
पेट्रोल सेना के रक्षण में बिक रहा है। बच्चे एग्जाम्स नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि पेपर खत्म हो गया है। खाने पीने के तक लाले हैं और ईंधन और बेबी फूड की भी मोहताजी है। ये आलम है श्रीलंका का इस समय। श्रीलंका इस दशक के सबसे गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है दोस्तों। लगातार दूसरे साल में विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में 70% की गिरावट आई, जिसकी वजह से करेंसी डिवैल्यूएट हुई यानी कि श्रीलंकन रुपी जो है उसकी वैल्यू गिरी। अब इसकी वजह से महिंदा राजपक्षे सरकार जरूरी चीजों को इम्पोर्ट यानी कि आयात भी नहीं कर पा रही है। जी हाँ, इतना ही बुरा हाल है श्रीलंका का। मगर श्रीलंका इस कगार पर पहुंचा कैसे और क्या हो सकता है इस संकट का तोड़? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं साहिबा खान और आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट ज्ञानवादी पॉडकास्ट FYI यानी कि फॉर योर इन्फॉर्मेशन। इस समय श्रीलंका में हर चीज की कमी के चलते प्रदर्शन हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं और ईंधन और पेट्रोल तो सेना की हाजिरी में बांटा जा रहा है कि कहीं कोई दंगा फसाद ना हो जाए। इस गंभीर विदेशी मुद्रा संकट से जूझ रही अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए श्रीलंका ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF से फाइनेंशियल असिस्टेंस माने कि वित्तीय सहायता मांगी है। आपको बताते चलूं कि श्रीलंका पर पहले से करीब $400 करोड़ का कर्जा है। उस पर से $100 करोड़ के इंटरनेशनल सॉवरेन बॉन्ड्स का कर्जा अलग है जो जुलाई में मैच्योर होगा, परिपक्व होगा, तो यानी कि अब वो भी इन्हें जल्द ही रिपे करना होगा। जानकारों की माने तो श्रीलंका के पास इस समय रिजर्व्स में केवल $2.10 करोड़ ही बचा है, जो शायद एक महीने में दवा दारू और जरूरी चीजों के आयात में ही खत्म हो जाए। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड मदद करने के लिए तैयार तो है, मगर जब किसी देश पर पहले ही इतना कर्जा लदा हो तो उसे पैसा देने के बारे में हर कोई 10 बार सोचेगा। और फिर पिछले साल श्रीलंका ने IMF से ही कोरोना महामारी का सामना करने के लिए करीब $787 मिलियन उठाए थे। हो सकता है कि राजपक्षे शायद वर्ल्ड बैंक से भी मदद मांगे। मगर ऐसा क्या हुआ कि श्रीलंका की अर्थव्यवस्था इस कगार पर पहुंच गई? देखिए, कोरोना काल का असर तो हर देश पर पड़ा और बहुत बुरा पड़ा, मगर कहा यह जा रहा है कि श्रीलंका ने जो कर्जे लिए उनका इस्तेमाल सही से नहीं किया गया, मतलब फंड्स का मिसमैनेजमेंट किया गया। उस पर से यूक्रेन में जंग के चलते जब पेट्रोल और डीजल महंगा हुआ तो भैया श्रीलंका की लंका लग गई। अगर जानकारों और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो श्रीलंका को अपनी GDP का 119% पैसा अभी कर्जा चुकाने में लगा देना है। मतलब अगर पूरा GDP भी दे दे, मतलब GDP यानी कि आप समझ रहे हैं जितना भी एक देश अपने गुड्स और सर्विसेज से कमाता है, वो होता है GDP दोस्तों। तो जितना श्रीलंका अपने पूरी GDP में कमाएगा उससे भी ज्यादा कर्जा उसको अभी देना है। मगर ये कर्जा दिया कौन? तो सबसे ज्यादा कर्जा तो वैसे चाइना और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दिया है और कर्जे का जो 36.4% इंटरनेशनल सॉवरेन बॉन्ड्स का है, जिसमें से एशियन डेवलपमेंट बैंक का हिस्सा है करीब 14.6%, जापान का है 10.9% और चीन का है 10.8%। भारत ने ईंधन, खाना और दवाओं के लिए श्रीलंका को करीब $100 करोड़ का उधार अभी दिया है। एक देश से श्रीलंका ने 150 करोड़ उधार ही ली है ताकि चीजें पटरी पर आ सके। 40,000 टन के डीजल आयात के लिए भी श्रीलंका को $500 मिलियन लेना पड़ा। भारत ने और $400 मिलियन की मदद की है करेंसी एक्सचेंज में। चीन की बात करें तो उन्होंने 100 करोड़ की मदद दी है हाल फिलहाल श्रीलंका को, मतलब एक साल की अगर बात करें, अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत, जिसमें उन्होंने वहां पोर्ट्स बनवाए और कोल पावर प्लांट वगैरह बनवाए। सुनकर मेरे कानों में से बस खून निकलना बाकी है, मगर अब वहां सिचुएशन कितनी खराब है ये भी जान लें। ये तो पता ही होगा कि तेल और खाना लोगों को कैसे मिल रहा है, मगर अब लोग श्रीलंका छोड़कर इंडिया में घुस रहे हैं अवैध शरणार्थी बनकर यानी कि इलीगल रेफ्यूजीज बनकर। कुछ ही दिनों पहले श्रीलंका से आए 16 लोगों को भारत में तमिलनाडु में पकड़ा गया, जिनमें से 8 तो बच्चे ही थे और शायद ये आखिरी अवैध शरणार्थी नहीं होंगे। जैसे जैसे संकट गहराएगा वैसे वैसे लोग श्रीलंका छोड़ना चाहेंगे। हद तो तब हो गई जब श्रीलंका के अस्पतालों में सर्जरी रोकनी पड़ गई क्योंकि उनके पास सर्जरी के लिए बिजली सामान इत्यादि कुछ था ही नहीं। तब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर बीच में आए और श्रीलंका को एड पहुंचाई, तब जाकर मेडिकल फैसिलिटीज दोबारा चालू हुई है। अब हाल ये है कि रेटिंग एजेंसीज ने श्रीलंका को कर्ज बधिर देश घोषित कर दिया है। फिच नाम की रेटिंग कंपनी के अनुसार 450 करोड़ डॉलर के केंद्र सरकार के कर्जे से अलग हटकर श्रीलंका को अभी और 250 करोड़ डॉलर चाहिए ताकि वो अपने प्राइवेट और सरकारी फर्म्स को दोबारा चालू कर सके, सक्रिय कर सके। फिच का कहना है कि श्रीलंका को अभी 2000 करोड़ डॉलर और चाहिए ताकि फ्यूल, खाना और बाकी जरूरी चीजों की कमी आयात द्वारा पूरी की जा सके। एक्सपर्ट्स का सिर्फ यही कहना है कि श्रीलंका अपना कर्जा चुकाने पर ज्यादा ध्यान दे रहा है, मगर उसे फिलहाल देश में गहरा आर्थिक संकट पर ज्यादा गौर करना चाहिए। कर्जा तो भाई चुकाना है, वो चुक ही जाएगा। रही बात कैसे चुकाना है, तो कई लोग कह रहे हैं कि भैया 3-3 साल का स्ट्रक्चर बना करके कर्जा आप चुकाइए, जिससे कि श्रीलंका के जो लोग हैं उन पर टैक्सेस का जो बोझ है वो कम पड़ेगा। मगर फिलहाल सिर्फ लोगों को बचाया जाए इस आर्थिक संकट से, यानी कि उनका मेन फोकस ये होना चाहिए कि एसेंशियल कमोडिटीज हैं वो लोगों तक पहुंचे, ना कि उनका कर्जा चुकता हो। तो सुना आपने, कर्जों और कर्जदारों की लाइन लगी हुई है। ये सब सुनकर तो मुझे क्रेडिट कार्ड लेने में भी डर लग रहा है। आप क्या सोचते हैं श्रीलंका के बारे में, थोड़ा हमें बताइए। आपको क्या लगता है कि कैसे बेड़ा गर्क किया श्रीलंका ने अपना, या कैसे श्रीलंका इस संकट से उबर सकता है, हमें बताएं एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर ट्वीट करके। मैं हूं साहिबा खान और आप सुन रहे थे एबीपी लाइव पॉडकास्ट की पेशकश FYIN की। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, पॉडकास्ट की साउंड डिजाइन की है ललित जी ने। नमस्कार।
फिजिकल डिस्टेंसिंग के टाइम पे न्यूज डिस्टेंसिंग मत करो, डाउनलोड करो एबीपी लाइव ऐप और जानते रहो।
दिस इज एन एबीपी लाइव पॉडकास्ट।